ज्ञानचन्द्रानन्दस्य ध्यानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णचैतन्याय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राप्यं प्रं प्रभजन्ते पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तवैवास्मि तवैवास्मि कल परसों 11 तारीख को है राधा रामनवमी है और मैं चाहता था जो रामनवमी यहीं पर करके जाऊं, किंतु पहले से बिना पूछे हमसे इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि हमको 7 तारीख को यहाँ से निकलना, क्योंकि हमारी इच्छा थी तो आगे से चेष्टा करेंगे। ये जन्माष्टमी जब आए हैं तो जन्माष्टमी मना सकते हैं रामनवमी। आई वांटेड दैट आई शुड ऑब्जर्व रामनवमी इन इंडिया एंड आफ्टर वन डे टू डे देन आई गो एनीवेयर एल्स, बट माय प्रोग्राम दे हैव सेट अप फ्रॉम बिफोर and at that time he could not imagine that from only I will go outside. Where I am going, there is none devotee, Bangkok, no devotee. It may be hardly 1-2 devotee may come. And here, thousands. So, jaisa bhi ho, मैं आज से ही रामनवमी आरंभ करता हूँ। From today we are going to observe नवमी, like एक दिन पूर्व के की बोले अधिवास की भांति आज से ही हम लोग रामनवमी पालन करेंगे, उनके संबंध में कुछ गुणगान करें। केशवद्वीत राम से केशवद्वीत दशम, इसलिए श्रीमद् भागवत में राम का चरित्र भी दिया है, शास्त्रों में सर्वत्र उनके लीला कथाएं दी गई, एवरीवेयर इन अवर एपिक्स एस्पेशली इन श्रीमद् भागवत। केशवद्वीत राम से केशवद्वीत दशम, so Krishna is man from him and all are his vaibhav katha, so hum ram ki katha kahenge kintu keval hindi mein bolenge, piche se koi translation kar lega, I will speak only in hindi, otherwise my flow will break down, main hindi mein hi bolunga, angrezi mein bolte bolte main thak gaya। I'm tired, always speaking English, though broken even, but here in Navadvip I spoke in Bengali. I tried my best to speak also in Hindi, I could not.
What's in Bombay?
It depends on
Bombay.
राम कथा के पहले ये समझना होगा, राम कथा के आदि प्रवर्तक लोक रूप में वाल्मीकि जी, किंतु वाल्मीकि जी के भी गुरु नारद जी हैं, याद रखना चाहिए। नारद जी उनके गुरु हैं और नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, वाल्मीकि जी वो प्रचेता, श्रीमद् भागवत में आए प्रचेता वही प्राचीन बरही इत्यादि, तो प्रचेता के वंश में उनके पुत्रों में से एक है। ये भी सत्यजु की बात है। तो वाल्मीकि जी उनके वंश में हुए। एक महाडकैत दुतेरे वाल्मीकि जी का भी आता है, जो नारद जी ने उनको उल्टा राम करने के लिए कहा था, मरा मरा, किंतु वाल्मीकि रामायण में श्रीमद् भागवत में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। किंतु ये सब प्रमाणिक है, बांग्ला वाला प्रमाणिक नहीं है, किंतु ऐसा मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु हम लोगों को इस पर निर्भर रहना चाहिए। वो राम नाम की महिमा उसमें वर्णन है, इसलिए वो भी बुरा नहीं है। किंतु तभी ये वाल्मीकि रामायण विशेष करके, ये और भी बहुत से रामायण है, हजार अध्यात्म रामायण भी प्रमाणिक ग्रंथ है, और सब है, किंतु ये दो हैं। और श्रीमद् भागवत के आधार पर ही वो कृष्ण के बदले उन्होंने तुलसीदास जी ने राम का चरित्र लिखा, किंतु सिद्धांत भागवत का सब दिया है और वाल्मीकि रामायण का भी कुछ है। तो वाल्मीकि जी दोनों चरित्रों को जब ही ले तो कोई हर्ज नहीं, तो ये किसके पुत्र, किसके, च्यवन ऋषि के, किंतु दुसंग में पढ़कर लुटे डकैत हो गए, और फिर नारद जी की कृपा से वो मरा मरा कहते हुए कितने हजार वर्षों में वो कृष्ण की कथाओं को जो उसमें वर्णन है सब उनके हृदय में स्फूर्ति हुई। राम समाधि जैसे भागवत समाधि ग्रंथ है, वैसे वाल्मीकि जी की ये समाधि ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा इसका वर्णन है। तो ये वाल्मीकि जी एक दिन तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए, और उनके साथ में उनके शिष्य भरद्वाज, जिनकी तपस्या स्थली प्रयाग में है, और वाल्मीकि जी के कितने आश्रम है इसका ठीक नहीं, नारद जी का भी कितना करोड़ों स्थान है कोई ठीक नहीं। चित्रकूट के पास में एक है, एक प्रयाग में है, एक और कहीं मिलता है जहां पर कि सीता जी उनके साथ में मिली थी उनका आश्रम, नहीं अरे वो जहाँ पर श्री राम ने अंत में त्याग किया तो उनके वाल्मीकि आश्रम में रही लौकुश वहीं पर पैदा हुए, वो कहीं गंगा या गोमती के किनारे या कहाँ, तो इस तरह से उनका वर्णन मिलता है। तो एक समय नारद जी उनसे मिले पहले, और नारद जी से वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आज ऐसा कौन है, ये त्रेता युग की बात मालूम पड़ती है, आज ऐसा इस युग में इस समय में कौन है जो महाप्रतापी है, जिनमें जितने प्रकार के सद्गुण हैं, बल है, विद्या है, कृपालुता है और सब जितने भी कृतज्ञता है, जिसमें सारे गुण एकत्रित है और इस समय त्रिभुवन में सबसे अधिक सुंदर है, ऐसा कौन पुरुष है? तो नारद जी उसका संक्षेप में वर्णन करते हैं। इसके बाद ही दूसरा अध्याय इसका आरंभ होता है। एक दिन वाल्मीकि अपने शिष्य को साथ लेकर के तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए और वहां पर स्नान करते करते उन्होंने देखा कि एक जोड़े क्रौंच पक्षी एक स्नान करते समय उन्होंने देखा पेड़ की डाल पर एक जोड़ी क्रौंच पुरुष और स्त्री बैठे थे और वह काम में मोहित होकर परस्पर प्रेमालाप कर रहे हैं और उसी समय में एक काला पहेलिया भयंकर रूप वाला उनमें से एक को अपने बाणों से विद्ध कर दिया। उसी समय में वो गिर करके नीचे लथपथ हो गया और उसी समय में वाल्मीकि जी ये दृश्य देखा और देखते ही भावाविष्ट होकर के क्रोध में आविष्ट हो गए और उसको अभी संपाद दिया। कहाँ मिला? माँ निषाद। अरे तो उन्होंने साथ में उन्होंने नहीं बल्कि अपने आप उनके मुख से निकल पड़ा मानिषात प्रतिष्ठान तमगम सरस्वती समान यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहिता। निषाद तुम्हें कभी शांति न मिले, तूने क्रौंच के जोड़े में से एक को जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के उसको तुमने हत्या कर दी। रोग से युक्त होकर के उन्होंने ऐसा कह दिया और ये श्लोक बना चार चरण का और इसको किसी प्रकार से भी किसी भी स्वर से इसको गाया जा सकता है। तरह तरह के रागों से रागनियों से इसको गाया जा सकता है। जब अभी संपाद दे दिया तो जब थोड़ा सा स्नान करके ऊपर आते हैं तो अपने शिष्य से बोले मुझे तो क्रोध कभी नहीं आता और विशेष करके संसार में तो होता रहता है तो मुझे क्रोध क्यों आया और ये अपने आप मुख से निकल गया बिना प्रयास के, ऐसा क्यों हुआ? और अफसोस करने लगे। विशेषकर कहे हुए जो क्रोध नहीं करना चाहिए किसी को, क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है और अनर्थ हो जाता है, ऐसा नहीं करना। मैंने क्यों कहा? किंतु भगवान, ये मुख से जो निकला ये तो छंद है, और इसको तरह तरह के राग में भी गानियों से गाया जा सकता है। कि ऐसा क्यों हुआ? सोचते दोनों आदमी अपने आश्रम में आए, और उसी समय जब आश्रम में आए ब्रह्मा जी वहां से प्रकट हुए उनके सामने। उन्होंने कहा जी पिता, या जिस रूप में संबंध पितामह, आज मेरे मुख से ऐसा क्यों निकला? मैं तो इसके लिए, मैं मुझे क्रोध नहीं होता, आज क्रोध हो गया, ऐसे वचन निकल गए, तुम्हें कभी शांति नहीं मिले, ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी प्रेरणा से ऐसा निकला, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं, और ये प्रेरणा भगवान के तरफ से हमारे हृदय में हुई अंतर से, और जिससे ये तुम्हारे छंद चार चरणों युक्त ये छंद निकला। कोई चिंता मत करो, अपने इष्ट देव जो राम हैं, जिनको नारद जी ने तुमको इस मंत्र से दीक्षा दी है, उनके चरित्र का इन्हीं छंदों में गान करो, जिससे संसार का कल्याण हो सके। इनके लिए क्या करूं, कितने देर तक बैठे थे not so much time, otherwise they can tolerate. Why you cannot? Why? You should try. Totally you have not... What you are doing? What writing? What you are writing here? What you are writing? Bogus person.
So, Gurudev want to be Ram Navami, but people have to be...
Look, no, this is not... This is not... Yeah. Wo rukka diya hai. Rukka diya, wo mat bol.
So, in different Ramayan, but prominent is Valmiki Ramayan. So, in other Ramayanas, they told that Valmiki Rishi, he could not utter the Ram name properly. So, in reverse way, he uttered Mora Mora, after that it came Ram Ram. So, though it is not in mentioned in Valmiki Ramayana, but the glory of Ram name, holy name of Lord Ram, so no problem, not contradicted with any conclusion. So, once, Valmiki Rishi went to take bath in the river Tamasa and surrounded with his disciple headed by Bharatai Rishi. When he went to take bath, two birds named Crouch, they are meeting together in the branch of a tree. All of a sudden, one hunter came and shoot one down, one from the two of one, shoot down on the ground. Seeing this scene, Valmiki Rishi, who never get angry, he became very angry and he cursed the hunter, told, Maam ishada pratishtham tamada mahasasyatihi samana yattavucha mithuna degam vadihi kamamohitam. Oh hunter, you never get peace and tranquility in your mind for your whole life because you shoot down one crouch of art who was making together in the branch of a tree. After taking bath, he told to his disciple Bharadvaj, oh my dear disciple, I never get angry. I don't know why anger comes in my mind. By anger, everything can destroy. Bharadvaj told me, something must be there, good in this shloka in hidden way. And this shloka can be uttered in different view and different meters. In the meantime, Brahma appeared there. Valmiki Rishi paid his obeisance to Brahmaji and told, oh grandfather, I don't know why I became so angry and why this shlok came out from my mouth. But Brahmaji told, don't worry. It due to my inspiration in your heart, and it came in my heart from Supreme Personality Godhead. So don't worry, by this shlok and this mitra, you can compose, you can manifest the characteristic and life history and all pastimes of Lord Ram, which you have initiated by your Gurudev Narayana by this mantra. You can do and explain everything about Lord Ramchandra. Hare Krishna.
So, Brahmaji ki kripa se और नारद जी की कृपा से नारद जी ने जो जो उनको कहा था रामचंद्र जी की विदाई उन्होंने ब्रह्मा जी की कृपा से समाधि में देखा। क्या क्या देखा? देवता लोग रावण के अत्याचार से क्षुब्ध होकर भगवान से प्रार्थना की कि रावण का विनाश हो और हम लोगों की रक्षा की। और उस समय में देवताओं के आवाहन से भगवान रामचंद्र जी ने उनको आश्रय दिया, आश्वस्त किया कि मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा अपने पूरी परिकरों के साथ। ये देखा, तत्पश्चात देखा रघुकुल में महाराज दशरथ और उनकी तीन रानियों के साथ में विवाह। बहुत दिनों तक कोई बच्चा नहीं। फिर उन्होंने देखा उत्तरेष्टि यज्ञ महर्षि वशिष्ठ की
देख रहे हैं
के परामर्श से श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उसमें से अग्निदेव चोरू लेकर प्रकट किए और इनको दिया जाए अपनी रानी में किसी को दीजिए। उन्होंने विभाग किए दो, एक कौशल्या को दिया और एक सुमित्रा को दिया। कैकई को दिया और उन दोनों ने कुछ कुछ अपना भाग दोनों मिला करके और दे दिया सुमित्रा। तो दोनों ने दिया इसलिए उनके दो पुत्र और कौशल्या के राम सुमित्रा के कई के भारत उनके शत्रु। ये देखा समाधि में। इसके बाद में उनके बाल्य जीवन का जो जो लीलाएं की वो देखा। ये भी देखा जी महाराज भक्त को दशरथ को जब पुत्र नहीं हुआ अपनी 360 पटरानियों से पटरानी और रानियां कितनी थी जब नहीं हुआ। तो ये एक बार कहीं शिकार खेलते हुए या किस रूप में गए बाहर निकले कैका देश में पहुंचे और शाम हो जाने से उनके मित्र थे कैका नरेश किंतु शाम होने से लौट ना सके उनके यहाँ ठहर गए। कैकन नरेश ने अपनी बेटी सुंदरी किशोरी उनकी सेवा में लगा दिया। उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था तू करो। महाराज दशरथ की उम्र कितनी थी कहो? इतने 1000 वर्ष। और कैकई अभी 15-16 वर्ष की सर्वगुण संपन्न परम सुंदरी थी। उन्होंने महाराज दशरथ के लिए सारी व्यवस्था की अपने हाथों से, खिलाने पिलाने सोने इत्यादि सारी व्यवस्था की। सवेरा जब हुआ तो महाराज दशरथ अयोध्या के लिए चलने लगे तो महाराज कैकई से बोले, एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये कि आपकी लड़की बड़ी सुंदरी और योग्य है, मैं इसे अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। यदि आप उचित समझें तो कन्या का दान हमको कर दी, उन्हें लेने हैं, मैं नहीं करता। तो क्यों नहीं करते? आपकी बहुत सी रानियां हैं, तो उनके जो लड़के होंगे बड़े वो राज्य के अधिकारी होंगे। मैं इसी शर्त पर दूंगा कि इसका यदि पुत्र हुआ आपको उसको राज्य अभिषेक करना पड़ेगा आपके पास। तो हंसने लगे महाराज दशरथ, ये तो मेरे लिए वरदान है कि 360 रानियां पटरानियां और कितनी न जाने स्त्रियां हैं। तो हम आज तक हमको पुत्र नहीं हुआ, 50,000 वर्ष बीत गए नहीं हुआ। तो यदि इसको पुत्र हुआ तो जरूर यही राज सिंहासन को बैठा, इसमें दो हाँ प्रतिज्ञा कीजिए। उनका जी प्रतिज्ञा कर हंस करके ही कर। अब विवाह होकर के आई यहाँ, इसके बाद में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और राम बड़े, इसके बाद में भरत, इसके बाद जमज लक्ष्मण और शत्रु बीच पैदा। उस समय में चारों तरफ में खूब बधाव बजने लगा और फिर वहाँ की जी लीला है वहाँ जानते हैं, वो भी दर्शन किया। और इसमें कैकेयी राम को अपने बेटे से अधिक मानती थी और दूसरी जो थी सुमित्रा वो भी अपने बेटों से अधिक राम को, विशेष करके कैकेयी इनको बहुत मानती थी। इसी बीच में एक और घटना हुई, देवताओं से और असुरों से युद्ध हुआ, उसमें दशरथ 10 दिशाओं को जीतने वाले थे, 10 जिनका ऐसा रथ है जिस पर वो चढ़कर के 10 दिशाओं को विजय करते हैं। देवताओं ने बुलाया, उन्होंने असुरों को परास्त किया, किंतु युद्ध में उनके रथ की धुरी टूट गई और उससे वो कूद करके नीचे आकर के अपने हाथ से उसको थाम दिया, धुरी को गिरने नहीं दिया। और इसके बाद में उन्होंने जय किया, जय के बाद में भी तुम तो बड़ी वीर हो और हमारी रक्षा की, हमारे इस रण क्षेत्र में सहायता की, इसलिए तुम 2 वर मांगो, कोई भी जो चाहो वो 2 वर मांगो। उन्होंने कहा आप मेरे पति हैं, इसलिए आपकी सेवा की है, इसमें वर लेने की तो कोई जरूरत नहीं। तो नहीं हम तो देना चाहते। अच्छा तो ऐसा कीजिए जो वर मैं अपने समय के अनुसार में ले लूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी ले लूंगा, ये आपके पास में थाती रखती।
So, Valmiki received by the grace of Narad Rishi and the Brahma, the grandfather Brahma, he saw everything in his trance. Once Dasaratha Maharaj went for hunting and arrived into Kaikeyi Naresh, the king of Kaikeyi's days, and he was tired and became night. So he took rest over there. And Kaikeyi, the king of Kaikeyi days, the king of Kaikeyi, he was friend of Dasaratha Maharaj from beginning. So he engaged his own daughter for the service of Maharaj Dasaratha. And Kaikeyi was very extremely qualified. She served Maharaj Dasaratha in so many ways. And Dasaratha Maharaj became very pleased. At that time, Kaikeyi was a teenager. And Dasaratha Maharaj was so elderly person. Next day, when he went to take leave from there, Kaikeyi Naresh, the king Kaikeyi, came to see him out. And Maharaj Dasaratha given proposal to Kaikeyi Naresh. He told, "Oh king, shall I propose something to you?" "Yes, why not? I have seen this your daughter Kaikeyi is extremely qualified and she served me so many ways. So, if you don't mind, can you arrange engagement with myself and Kaikeyi?" Kaikeyi told, "No, never." Dasaratha told, "Why not?" Then he told that he has so many queens. So when Swami come from them, there will be king. I don't like all this king. If you promise that son of from the womb of Kaikeyi, my daughter, he will be king after you, then I will be agree to for wedding ceremony with you. Then the son began to laugh because he had no son at all. So yes, it will be. So he has seen in this in his trance. After that, under guidance and by suggestion of Vasishtha Rishi, the priest and guru of Dasarath Maharaj in his dynasty, he did one Putrasi Jagna. Putrasi Jagna means to get son, he did some fat sacrifice. And who did this? Singh Rishi. Singh Rishi also was son-in-law of Dasarath Maharaj. Formerly he married his daughter Santa. So he came and did fire sacrifice. And Agni Dev, the predominant deity of fire, he came out with some sweet rice. The Dasarath Maharaj donated this sweet rice to Kausalya Devi and Kaikeyi Devi. And Kausalya Devi and Kaikeyi, both of them gave some part of that sweet rice to Sumitra Devi. So from Kausalya, Ram took birth from Kausalya Devi, Bharat from Kaikeyi Devi, and both Kausalya, Mother Kausalya and Mother Kaikeyi gave some part of their charu. So Sumitra Devi gave twins, son. So eldest one Lord Ramchandra, after that Bharat, after that Lakshman and Shatrughna. He has seen all this in his trance. So childhood pastimes and other he has seen in trance. After that, we will describe again Hare Krishna.
Aur dekha kya? रामचंद्र जी के जन्म के बाद में तुम लोग विदेश में रहो, यहाँ मत आओ।
Kaikeyi Devi jumped up on that chariot and took the axle by her own hand. After that, Dasarath became winner. He conquered the our demons. After finishing fighting, he embraced Kaikeyi and told that you can ask from two benedictions. Kaikeyi began to laugh. You are my husband, so I help you for this thing. So I don't like any benediction. Dasarath said, no, you have to ask some benediction. Okay, when time will come, I will ask for this. This is safe deposit with you for my future. When time will come, I shall ask benediction. So, Valmiki ji has seen this first time also in his plans. Hare Krishna.
Ramchandra ji, aur ye sab bachpan mein kaise Gurukul mein gaye aur kathor parishram ki shiksha di, ye bhi dekha. इसके बाद में देखा कैकेयी राम को अधिक प्यार करती है. एक दिन राम उसकी गोदी में बैठकर कुछ बातचीत कर रहे हैं और कैकेयी अपनी गोदी में बिठा कर प्यार कर रही है. राम ने उनसे कहा, मैया मैं तुमसे एक चीज चाहता हूं. वो क्या चाहता हूँ कहो, मैं दे दूंगी. सब कुछ जो चाहेगा वही दे दूंगी. तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं. उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं देवताओं के किसी कार्य के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ और बिना तुम्हारी कृपा के होगा नहीं. इसे तुम महाराज दशरथ थे, ये दो वर मांगना जो तुम्हारे अभी मंगनी के पड़े हुए हैं, फिर भरत जी का राज्याभिषेक हो उनके बाद में और रामचंद्र जी का 14-12 ये तुमको हमको देना होगा. सुन करके कहते तो सन रह गई, चिंता नहीं कर सकी जे क्या कहें. तो ये तो मेरे द्वारा होगा तो फिर मुझे वरदान किस लिए. अब तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सब काम और पृथ्वी में आना हमारा सब गड़बड़ हो जाए, देवताओं का कार्य सिद्धि नहीं हो। अंत में बड़े प्रेम से कहा सुन करके उन्होंने कहा दिया, अच्छा तो मैं जगत में मुख नहीं दिखला सकती तब तो मेरे लिए इतना तो करो। फिर बहुत दिन बीत गए, बरों की बात भी, रामचंद्र जी के ये दो निवेदन की बात भी कह कहीं भी भूल गई, राम भी भूल गए, दशरथ भी भूल गए, पराली वाली बात ये इसके दर्भ से पैदा होने वाला ही राजगद्दी पर बैठेगा, ये भी क्रमशः सब कुछ भूल गए। भूलने के बाद में फिर विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनसे मांगा महाराज दशरथ से, महाराज मुझे कुछ आपको देना होगा तो सब कुछ दूंगा, वैसे ही आपके लिए जो प्राण की जरूरत हो दूंगा, निर्भीक होकर मान। उन्होंने कहा मैं आपके दो पुत्रों को कुछ समय के लिए चाहता हूँ, हमारा यज्ञ चल रहा है सिद्धाश्रम में और राक्षस लोग पूरे नहीं कर देते, मैं उनके मारने में खूब समर्थ हूँ, किंतु हमारा यज्ञ भी नष्ट हो जाएगा, हमारा जो तपस्या होगा उसका बल सब नष्ट हो जाएगा, और ऋषि लोग भी वहां पर हैं, उनको खा जाते हैं वो हाड़ और मांस की वर्षा कर करके उस अग्नि को शांत कर दे, इसलिए आप राम लक्ष्मण को। दशरथ जी ने कहा हमारे दुधमुख के बच्चे अभी ये क्या कर सकते हैं, मैं खुद चलूंगा चतुरंगिणी सेना के साथ में और वहां पर उन राक्षसों को मार दूंगा, तो ये आपके द्वारा संभव नहीं है। राम लक्ष्मण को साधारण मत समझिए, ये नारायण के जैसे गुण वाले आप बड़े समर्थ हैं, इनको कुछ वर प्राप्त है या क्या, ये सब कर देंगे। महाराज दशरथ जी सुन नहीं गए, विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी इनको समझाया, इसमें आपका और सबका कल्याण है, इन दोनों का भी कल्याण है मैं देख रहा हूँ, इसलिए आप कोई चिंता मत करें। इनको लेकर के गए और बीच ही में राम को उन्होंने धनुष शास्त्र के कुछ वाण और विद्याएं भी दी। जब वहां सिद्धाश्रम में पहुंचे उस समय में ताड़का राक्षसी ताड़ के समान लंबी विराट आकार वाली राक्षसी और उसके दो पुत्र मारीच और सुबाहु ये सिद्धाश्रम के रावण की छावनी के ये कर्मकर्ता थे, ये लोग ऋषियों को खा जाते, उनके यज्ञ विध्वंस कर देते, इसलिए राम ने कहा जी आप लोग यज्ञ आरंभ करें, पहले तो रास्ते में ही ताड़का मिली और उनको मारना चाहा, उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाए और उसको वो तो साथ ही साथ में मर गई। और मारीच और सुबाहु फिर आए यज्ञ विध्वंस करने के लिए, सुबाहु को तो वहां पर मार डाला और मारीच को बाण मारा तो वह लंका में जाकर के समुद्र में गिरा, उसको याद थी। इस तरह से ये चरित्र को भी देखा, सुनते हैं रावण भी किसी समय अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम अपने भाइयों के साथ में वो क्रीड़ा कर रहे हैं और उस समय में रावण जैसे दिग्विजय के लिए निकला था वो कैसे अयोध्या पहुंच गया और मगर का रूप धारण करके राम को निगल जाना चाहा, राम को रावण, किंतु राम ने पैर के ठोकर से ऐसा मारा कि वो कहां जाकर के गया। तो ऐसी भी कथाएं आती हैं। इसके बाद में इनका वध करके महाराज वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा महाराज जनक का एक निमंत्रण पत्र आया है, उनकी कन्या जो भूमि से निकली है उसका स्वयंवर है और विश्व में वो सुंदरी है, वो मैं चाहता हूँ कि जब निमंत्रण आया है तो तुम मेरे साथ में चलो स्वयंवर को देखे जे कैसा स्वयंवर होता है। वहाँ देश विदेश के समस्त राजकुमार लोग राजा लोग आएंगे और उसमें एक धनुष है जो दधीची के हाड़ का जो बना हुआ वज्र था उसी का से और एक बना था वो शिव का धनुष है। वो कितना लंबा चौड़ा है जो 10,000 लोग भी मिल करके उसको उठा नहीं सकते। और सीता जी ने एक दिन खेली में उसको हटा करके और उसको लिपोट दिया, रोज उसकी पूजा करती थी। तो देख करके महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है, जो इस धनुष को तोड़ेगा इस पर बाण चढ़ा देगा उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करेगा। तो उस स्वयंवर को देखना है तो तुम लोग भी चलो। तो वो लोग भी तैयार हो गए। रास्ते में जाते जाते एक पत्थर की शिला पड़ी थी, बड़ा निर्जन वन, बड़ी सुरम्य किंतु कोई नहीं, एक पत्थर पड़ा था। रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव ये बड़ा निर्जन वन, बड़ा सुंदर, पेड़ पौधे सब अच्छे हैं किंतु उसमें कोई रहता नहीं, क्या कारण? तो ये गौतम ऋषि का आश्रम है, वो वहां पर तपस्या करते और उनकी बड़ी सुंदरी स्त्री थी, क्या नाम, अहिल्या। उसने कुछ इंद्र और चंद्र जान करके भी, कुछ समझ करके भी उन्होंने कुछ क्या किया, सतीत्व को नष्ट किया। इसलिए उनको जान करके उन्होंने, गौतम ने उनको और इनको भी अभिशापाती, तुमने जान करके समझ करके भी तुमने उनको रोका नहीं, जाओ पाषाणी बन जाओ। फिर रोने लगी, मैंने अच्छा ठीक है, भगवान राम का अवतार होगा, वो अपने पैर से स्पर्श करेंगे, तुम्हारा अवतार हो जाएगा, तुम शुद्ध होकर के हमारे पास में चले आएंगे। इस तरह से इस चीज को भी देखा, तो जिस प्रकार से राम ने अपने पैर से स्पर्श किया, साथ ही साथ में परम सुंदरी नारी बन गई और राम को चारों तरफ से प्रणाम किया और फिर अपने पति के पास में चली गई। ये प्रसंग, फिर वो जनकपुर में पहुंचे।
हरे कृष्ण। सो माता कैकेयी देवी एंड सुमित्रा यूज्ड टू लव राम मोर देन भरत एंड लक्ष्मण शत्रुघ्न, जस्ट लाइक इन ब्रज ऑल मदरली गोपीज टू लव कृष्ण मोर देन देयर ओन सन। So in the same way, Kaikeyi Devi and Sumitra Devi used to love Ram more than their own son. Once, in his childhood, Lord Ram took seat on the lap of Mother Kaikeyi Devi and touching her chin told, "Oh my dear mother, I want some benediction for you. You have to do that. I came in this world to fulfill some oath of demigods. So he said, okay, what you like, I can do for you, no problem." And Ram told, yes, you have to promise. Said, yes, no problem. Which you want, I shall do that. Then Lord Ram told, oh my mother, you remember, my father wants to give you 2 benedictions. He said, deposit now for you in the future. So when my father arranged for my abhishek in kingdom as a Juvaraj, means you will be king after Maharaj Dasarath, then you will ask for benediction that Bharat will be king and Lord Ram will be exiled for 14 years. So Kaikeyi, hearing this, because stand down, how possible? I could not do this. Lord Ram said, oh mother, if you not do, then I could not do my any work. So you must have to do. So somehow other Kaikeyi became agree. After some time, due to time and especially the influence of Jogmaya of Lord Ramchandra, Kausala Pargardis, Lord Ram, and Kausala Kaikeyi and Sunita, all everything they forget that mother, the king Dasarath will give benediction to Kaikeyi, and Kaikeyi and Lord Ram forget that Lord Ram have discussed with Kaikeyi Devi. They all of them forget everything. So once, when they become more grow up, then one day Vishwamitra came to Maharaj Dasarath. Oh Maharaj Dasarath, I want to ask something for you. Dasarath Maharaj became very happy. Okay, no problem. whatever you like, you can ask for me, even I can offer my life for your service. Dasabandhu, Vishwamitra told, I want of your two sons, Ram, Sri Ram and Sri Lakshman. Dasabandhu Maharaj not agree. But what purpose you want? I am being fire sacrifice, but the demons always destroy my fire sacrifice. I am able to kill them, but my razor or foot of my stomach will go away. I don't like all these things, so I want both of them. The supply told, they are too small like a baby. Their milk teeth has not done yet, so I can go with my all kind of soldiers. So I can protect your fire sacrifice and kill the demons. Vishnu told, don't think Sri Rama Lakshman is an ordinary boy. They are very qualified and very expert. They can kill and protect my fire sacrifice. You have to give them for some time. In the meantime, Guru and priest of Dasarath Maharaj arrived there named Vasishtha. He told, oh king, don't worry at all. I have seen in trance, if you donate them for some time, this is auspicious for you two and for your dynasty and both of Lord Ram and Sri Ram and Lakshman. Let them go, no problem. On the way to Siddhasam, I have Vishwamitra Ji was arranging fire sacrifice near, at present time, near Boxer. So,
Siddhasam, bolo.
Siddhasam. So, on the way, Taluka Rakshasi came there. Taluka means that she was sort of like a palm tree. Like Baladeva killed Dhenugas in palm, Talgon, same tall tree, so tall. So Lord Ram killed her very easily. After that, Lord Ram requested Vishwamitra Rishi and others to start her sacrifice. They start her sacrifice, Mari Chansubhau came there. As before, they used to throw so many bones and wine to destroy the fire sacrifice. They start there to do so. Lord Ram shoot that Subahu, and by one another arrow, he throw the marriage in the midst of ocean near Lanka. After this, finishing all this fire sacrifice, completing, Vishwamitra told to Sri Ram and Lakshman, one invitation letter came from the king of Mithila. He wanted to arrange Swayambhar Sabha to choose own bridegroom for her daughter. The arranging and invitation has come from me. So both of you can come with me. And you know, he has one bow made of the bone of Dadichi Rishi. And one was the thunderbolt of Indra, and next was one bow that's very long and very heavy. Every 10,000 hero could not lift it up very easily. Once in Sitadevi was quite a young girl, she lifted it up very easily by her left hand and cleaned the top, bottom part of the earth. So Maharaj Janak promised, who can string it up the bow? I can arrange marriage ceremony with my daughter only for that fellow, not others. So you can come with me and you can see also what kind of bow and who can string it up and what kind of festival will be there. And all of you can see there. Hare Krishna.
In the way, he touched a stone and became a very beautiful lady. And she was Ahilya, the wife of Gautam Rishi. So that lady was wife of Gautam Rishi, Ahilya. Then Ahilya did parikrama of Ram and went to his her wife, her husband. And then Ram reached in Janakpuri. When Janak heard that Vishwamitra Rishi has come with two voyagers of Ajodhya, Rajkumar, and then himself came with Dishanna of Ahilya and his Purohi, Guru. Purohit, not Guru.
Priest
of Maharaj Janak, Satayananda. And then he gets a beautiful sea out of the city, but nearer to city, and a beautiful garden. Today, now, time is over. So tomorrow and day after tomorrow, until I am here, I will speak about Ram Katha. But two times is taken. Anyhow, I will try. राम का कीर्तन कर सकते हैं? राम का अच्छा तो करो क्या वो एक नाव के वाला कल कहीं नाव से पार किया है ना
कभी कभी भगवान कभी भक्तों से पार